हाथ से सिर दिया। ब्राह्मणि ने देखा पीठ पे लाल दाग निकल रहे, मानो अभी रक्त निकल रहा है, अभी रक्त निकला। ब्राह्मणी की आंखों से आंसू आ गए। इतना सुकुमार छोटा सा बच्चा, एक तो इतना भार लाद दिया और आने में इसको विलंब हो गया तो नख से चीर दिया। आज आएंगे हमने, मैं तो जानते थे बड़े दयालु हैं, सहिष्णु हैं, तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं है। बस बड़ी मुश्किल से भीतर ले गई और ले जाकर के उसको रखा। बेटा फंस जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो। बस पंखा एक ले आई, झलने लगी। बेटे बच्चे ने उस पंखे को ले लिया। कहा जी बेटा एक बात करो, मैं जल्दी से जल्दी रसोई अभी बना करके ठाकुर जी को भोग लेकर के तुम्हें खिलाती हूँ, तुम दो मिनट के लिए रुक जाओ, तुम ऐसे तुमको नहीं जाने दूंगी। अच्छा मैया तू बनाओ। बस उसमें से सामान लेकर के रसोई बनाने में लगी। और इतने में ब्राह्मण जी ने आकर के दरवाजा पर उन्होंने थपथपाया। ब्राह्मण तो पहले से जली कटी हुई थी, बड़ी कोई क्रोधित मुद्रा में थी। उसने कहा जाकर के, हाँ बड़े आए, इस बच्चे को लेकर के सब भेज दिया, आप नहीं ला सकते थे, दूसरे को नहीं कह सकते थे। हबड़ा करके दरवाजा खोला और एकदम कुछ आग बबूला हो गई। ऐसा तो आपने क्यों किया? तो मैंने किया दिया भाई, तो उस बच्चे के ऊपर आपने इतना लाद क्यों दिया भार? अरे मैं बच्चा नहीं जानता हूं, ना कोई भार लादा, ना मैं आज तो मुझे एक दाना भी मुझे भिक्षा में नहीं मिली। क्या तू बात पगली जैसी कर रही है? अब मैं झूठ बोल रही हूं? वो बच्चा तो अभी सामने बैठा हुआ है हमारे घर पर, वो आप बैठा हुआ है, चलो देखो। तो हुआ क्या बतलाऊ ना? अरे वो टोकरी में लेकर के आया अपने कांवर में लेकर के, थका सा बच्चा, पसीने से लथपथ हो रहा। हमने पूछा उन्होंने जो गुरु जी ने भेजा है, तो मैंने तो कुछ भेजा नहीं, तो चलो तो देखो। जाकर के देखा जो टोकरी भरी हुई है खाने का सब सामान, उत्कृष्ट सामान उसमें रखा है। कहे बच्चा कहाँ गया? परंतु कहे यही तो बैठा था, अभी खोजने लगी, इधर दौड़ी इधर दौड़ी उधर दौड़ी। छोटी सी कोठी, वो भी टूटी फूटी, चारों तरफ देखा कहीं नहीं। ब्राह्मण भी खोजने लगी जो वो कहां गया। अब तो ब्राह्मण समझो, हो जरा पुस्तक लाना, तो वो गीता की पुस्तक, गीता की पुस्तक लाकर के जब ये श्लोक देखा जो गुछेम वहां ने हम देखा जो उस पर अब जो लाल काली थी स्याही थी उस पर नहीं है, वो अपने आप उड़ गई। जो विषय वहां में ये भगवान उसको सिद्ध करके दिखला दिया, देखो जो हमारे लिए ऐसा करता है उसके लिए जो और क्षम का मैं बहन करता हूं, इस विश्वास को रखो। अभी आप लोगों को जन्म किसने दिया? माता पिता ने नहीं। माता पिता यदि जन्म देते हैं तो अब बूढ़े हो गए, अब क्यों नहीं उनको बच्चा होता? इसलिए माता पिता जन्मदाता मूल नहीं है, ये सेकेंडरी है, गौण है। ये चीज को समझिए, हमारे आत्मा का जन्म देने वाला कोई भी नहीं है, वो परमात्मा है। इस विषय को समझिए। किंतु कर्तव्य पालन करने के लिए हमको उनका आदेश इत्यादि सम्मानना पड़ेगा, नहीं तो भगवान को भी कैसे समझेंगे। इसलिए अभी माता के गर्भ में हम जब थे, मैया ने खाया चावल रोटी और वो दूध होकर के उस बच्चे को कैसे पहुंच गया? कौन पहुंचाता है? प्रभु पहुंचाते हैं, अभी वही रक्षा करने वाले हैं। और अभी हम जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? अब आप लोग सुनते हैं ना, आज ये ट्रेन दोनों लड़ गई, कोई एक आदमी जा रहा था स्कूटर में, आज मर गया, कुछ ये हो गया। अभी हम बचे हुए हैं, प्रभु की ही कृपा है। अभी हमें जो ब्रह्म ज्ञान होगा, गीता का ज्ञान है, ये भगवान की ही कृपा है। वो प्रेरणा देकर के इनको माध्यम से हमको बुलाए, कभी दूसरों को बुलाएंगे, आप लोगों को वही रक्षा करें। यदि इस आत्मज्ञान की हमारी रक्षा हुई तो हमारी रक्षा हुई, नहीं तो कल हम पशु पक्षी होकर के जन्म ले सकते हैं, कभी गैया बैल हो जाएंगे, कभी गाड़ी में लगा दिए जाएंगे, और बंगाल में कहीं जन्म हो गया तो जीवित मछली को ही खा जाएंगे लोग, ऐसा भी जन्म होगा। इसलिए इस जन्म में, मनुष्य जन्म में कृष्ण कहते हैं सबका पालन पोषण करने वाले, इस चीज को समझें। और अंत में ये कहा कि यदि तुम्हारे ज्ञान में कुछ नहीं आता एक बात करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वते पाप मोक्षयिष्यामि मा। अनकंडीशनली सरेंडर करो भगवान के चरणों। सवेरे अंततः कुछ नहीं होता है, कृष्ण कृष्ण कर दो। कलयुग का ये महामंत्र है, आप मैं आगे आगे बोलूंगा, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम।
अच्छा फिर इसको दोहराइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ भी नहीं हो बस सवेरे उठ करके स्नान अपना जैसे आप लोग करते हैं, अपना नित्य कर्म से नियत करके बस एक मिनट के लिए हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी यदि दिन भर में कर लिया बहुत है। यही बीज आप लोगों के हृदय में प्रवेश करके एक विशाल वट की भांति इस छाया से जगत को भी स्निग्ध कर देगा। ये ऐसा ज्ञान है अपने आप पर, ये बीज होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन के हृदय में गीता का ज्ञान का ये बीज दिया ने? और सहज ही रूप में लोग भव सागर से कार्य, एक अर्जुन ही नहीं लाखों कोटि लोग। इसलिए गीता में कहते हैं कुछ नहीं आता है। अर्जुन ने कहा कि हम तो समझ पाएंगे, आप सबसे एक शब्दों में हमको बतलाइए मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, केवल मात्र हमारी शरण में आ जाओ। ये कह दो मैं तुम्हारा हूं, बस इतना ही। मैं समस्त अधर्म से पापों से तुम्हारा नित्य काल के लिए छुटकारा कर दूंगा। यही गीता का अंतिम उपदेश है। आज यही गीता का उपदेश, ऐसा कोई विश्व नहीं है, कोई राष्ट्र नहीं है जहां पर यह नहीं पहुंचता। आज विश्व के सभी राष्ट्र लोग भारत उस समय तक अभी भी गुलाम है, अंग्रेज लोग चले जाने पर भी उनके विचारों के द्वारा हम लोग अभी गुलाम बने हुए हैं। धोती पहनने नहीं आती हम लोगों को तो देश का क्या होगा जब धोती ही नहीं पहनने आती। वो लोग चले गए तो उनके विचारों में हम अभी तक हैं, कुछ अभी बदल नहीं रहा। गीता के ज्ञान के द्वारा ही बदलेगा। आप लोग उसकी किरणें हैं, आप लोग बड़े हैं, ये गीता का ज्ञान विश्व को सुनाएंगे। आज विश्व में कम से कम तो 60-70 भाषाओं में गीता का अनुवाद हो रहा है, हो गया है, और सब लोग गीता पढ़ रहे हैं। और हमारे भारतवर्ष के दोस्त के ये लोग वंचित है, विशेष करके गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं और सब स्कूल में। आप लोग यहां पर भी गीता जानते भी हैं, गीता को किसने लिखा? वेद व्यास। किंतु देखो, याद रखो, उन्होंने लिखा किंतु ये कृष्ण का कहा हुआ, कृष्ण की कही हुई वाणी थी। व्यास जी ने ओरिजिनल रूप में, मूल रूप में उनकी लिखी हुई नहीं है, ये कृष्ण की बात है, कृष्ण की भाषा में उन्होंने लिखा। इसलिए ये कृष्ण ही स्वयं इसके हैं। ये आज से 5000 पहले ये बात पहले थी, और उसके लाखों वर्ष पहले सूर्य को कृष्ण ने ये उपदेश दिया था। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम बार बार जन्म लेता है मरता है, तुमको याद नहीं और हमको याद है। आप लोग भी ऐसे इसको याद रखेंगे अपने जीवन पथ पर, आपके लिए जीवन के लिए एक प्रदीप होगा जैसे ये दीप जला है। आप लोग अच्छी तरह से विश्व को गीता का ज्ञान देंगे और भारतवर्ष में ये विचारधारा पुनः प्रवर्तित हो। आज मैं यही शुभकामना लेकर के आप लोगों को शुभ आशीर्वाद देकर के मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ।
महाराज जी का धन्यवाद ज्ञापन है। जैसा कि मन सबको विदित है कि आज का ये दिन पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत है। पूरे विश्व को एक संदेश है और अपने सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा में पूज्य स्वामी जी का पदार्पण हो सकता है। जिस प्रकार अर्जुन के बल ज्ञान के ऊपर जो छाया आ रही थी वो कृष्ण ने हटाई थी, उसी प्रकार हमारे सामने, हमारे बल के सामने, हमारे शक्ति के सम्मुख जो किसी प्रकार की भी छाया आज तक रही होगी, आज स्वामी जी के इन प्रवचन के पश्चात वो मिटी है। मैं अपनी प्रबंध समिति, अपने विद्या मंदिर के भैया और आचार्यगण सभी की ओर से उनके चरणों में नतमस्तक हूँ। साथ ही उनके साथ जो संत समुदाय के लोग उपस्थित हैं, हमारे अभिभावकगण उपस्थित हैं, उन सबका भी मैं आभारी हूँ। सभी ने आज श्री गीता जयंती के अवसर पर यहाँ पधार कर वातावरण को एक उत्साह प्रदान किया है। विद्या मंदिर की ओर से मैं उनका आभारी हूँ।
अभ्यान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय त्रिपाठी जी और मंच के परम आदरणीय सज्जन महोदयगण एवं अन्यान्य सज्जन, आज के इस महायज्ञ के लिए जो आज संपन्न होने जा रहा है, आज उसका समापन दिवस है। सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए मैं शिविर के आयोजन करने वाले कल्याणम करोति, विशेषकर रिफाइनरी के प्रतिनिधि स्वरूप त्रिपाठी जी का और इस आयोजन के लिए स्थान इत्यादि देने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए श्री 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 बाबा जी को मैं विशेष धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। मैं कल्याणम करोति को बहुत दिनों से जानता हूं। वृंदावन में भी इसके शिविर लगे थे, उस समय हमारे जिला के मुख्य अधिकारी की अध्यक्षता में वहां पर विकलांगों के लिए कुछ कुर्सियां दी जा रही थी और भी उनके विकलांगों के लिए या दूसरी प्रकार की आयोजन में भी मैं किसी न किसी प्रकार से युक्त रहा। मैंने आज ये शिविर भी देखा, शिविर और भी देखे हैं। इतने बृहत रूप में मैंने कहीं नहीं देखा। आश्चर्यचकित होना पड़ता है सबसे विशेष करके प्रसन्नता मुझे इस बात इसलिए है, जितने नेत्रदान के लिए जो चुने गए हैं वो सब ग्रामीण हैं। ऐसा ही लोकोपकार की भावना से कल्याणम करोति संस्था अनासक्त होकर के सब कार्यों को करती है। यह एक महालोक उपकार का कार्य है। गीता में भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। धन तो बहुतों को होता है, किंतु ऐसे लोग उपकार के लिए यदि वो न हो तो धन रहना एक अभिशाप होता है। धन कमाना कोई बड़ी काम नहीं है, धन कमाना तो सभी कमाते हैं, किंतु लोग उपकार के लिए उसका खर्च करना आसान नहीं है। खर्च करने का लोग तरीका नहीं जानते, इसलिए गीता में कहा गया यज्ञार्थात कर्मणो लोको एम अनत्र कर्म बंधन तदर्थम कर्म संतेय मुक्त संग समाचार। गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कार्य तो सभी लोग करते हैं, कर्म करते हैं सभी, किंतु यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ माने यज्ञो भाई विष्णु, ये जितने जीव हैं ये सब विष्णु के हैं, सभी विष्णु के दास दासी हैं। भगवान से सबका संबंध है, हमारा भी संबंध उनसे है, इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके जनों को प्रसन्न करना भी एक भक्ति है। भगवान का संबंध छोड़ करके लोग उपकार भी यदि किए जाए तो वो बंधन के कारण होते हैं, दुख के कारण होते हैं, और जो कोई भी काम हो उसे थोड़ा सा भगवान का भाव जोड़ दिया जाए तो वो अमृत के समान हो सकता है। इसलिए गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं आसक्ति रहित होकर किसी अपने लाभ के लिए स्वार्थ के लिए न होकर लोगों की यथार्थ कल्याण की भावना से और उसके द्वारा प्रभु भी प्रसन्न हो ऐसे कर्म किए यदि जाए तो यथार्थ में उसका कल्याण होता है। यही कर्म यदि जो आज हुआ है ये किसी स्वार्थ से हो, कुछ रोगियों के खर्च में भी जाएगा और उससे हमारा घर भी बन जाएगा तो ये नरक का कारण हो जाएगा। बहुत से लोग करते हैं लोग को उपकार, किंतु इस भावना से उसमें भी लाभ हानि व्यवसाय जोड़ करके अपने लिए भी कुछ लोग कर लेते हैं। मैं सोचता हूं कि कल्याणम करोति इससे ऊपर की है, इसीलिए इसके कार्य सब सफल होते हैं। इसीलिए धन का उपयोग निस्वार्थ होकर के अनाशक्त होकर के सभी सुखी हो इस भावना से किए जाए। मैं पास ही बैठे हुए रिफाइनरी के शायद प्रतिनिधि और संचालक हैं त्रिपाठी जी, मैं इनकी उदारता देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं समझता हूं कि ऐसे ऐसे लोग उपकार में ऐसे ऐसे उदार व्यक्ति यदि आए इन्हीं का अनुकरण करके मैं समझता हूं कि देश का कल्याण। मुझे सब तरह से ये ठीक लगता है, किंतु इसमें एक मेरा केवल संदेह है। संदेह यह उसे थोड़ा सा सावधानी रहा जाए तो सचमुच में यह काम हो सकता है बहुत सुंदर। वह यह कि मान लिया इसमें डकैत और चोर बदमाश लोग हों और जिनकी आंखें चली गई हों, जो मर्डर करता है उनका पेशा ही मर्डर करना और समाज का अनुपकार करना, अकल्याण करना, ऐसे लोगों की यदि आंखें बनाई जाए और उनकी आंखें मिले और फिर वो 10-20 आदमी का मर्डर करे तो इसके लिए भागी कौन होगा? कौन भागी होगा? जगत के कामों में ऐसा ही होता है, कभी रिस्क लेकर के करते हैं। किंतु मैं कार्यकर्ताओं से, इसके संचालकों से मैं निवेदन करूंगा कि देख सुन करके सावधानी से काम करें। दूसरी बात, मैंने कुछ लोगों से सुना है आंखें तो बन गई, आयोजन हो गया, चारों तरफ में ढोक ढाल भी बज गया, खूब प्रशंसा हुई, किंतु इसके बाद में कुछ रोगियों को कुछ असुविधा हुई और डॉक्टरों के यहां इधर उधर दरवाजे खटखटाए, कोई सा उत्तर प्रत्युत्तर उनकी कोई सहायता उस समय नहीं करता। ऐसे भी देख आदमी हमसे भी आकर के मिले हैं जिनको पीछे से देखने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे कोई यदि रोगी हो तो उनकी सुध ली जाए, उनकी आवश्यकताओं को देखकर के उनकी भी आगे के लिए भी सहायता, यहीं तक समाप्त नहीं हो गया, पीछे से भी उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे कि अपना कष्ट कह करके कर सकें और उनकी कुछ सहायता भी हो सके। मैंने अभी जो ये कहा कि मान लो कि जैसे जो मर्डरर हैं जिनका पेशा ही यही है, अच्छे हो जाएंगे फिर वो करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमद् महाभारत में ऐसा कहा गया। महाभारत युद्ध होने जा रहा, एक अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहा और दूसरा अपने धर्म के लिए लड़ रहा। धृतराष्ट्र जी अंधे हैं, जन्मांध है, धृतराष्ट्र हैं, स्वार्थ के लिए राष्ट्र को धारण किया है, पांडवों को राज्य नहीं देना चाहते हैं, अपने बेटे को ही राज्य देना चाहते हैं। लड़ाई आरंभ होने जा रही है, दोनों सामने आमने सामने सेना है। धृतराष्ट्र ने व्यास जी से कहा, मैं जरा युद्ध देखना चाहता हूं, युद्ध में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। व्यास जी को दया आ गई, उन्होंने कहा परम धार्मिक संजय है, संजय का मैं दिव्य दृष्टि दे देता हूं, यह देख करके जो कुछ उसमें होगा, बातें होंगी, जैसा युद्ध होगा सब ये देखेगा और आपको बतलाएगा। उन्होंने कहा जैसे हमको क्यों नहीं दिव्य दृष्टि दे दे, हमको दिव्य दृष्टि दे दीजिए, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? तुम महास्वार्थी हो, तुम अधार्मिक व्यक्ति है, इंद्रियों पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए तुम्हें दिव्य दृष्टि नहीं दूंगा। हाँ, इसको दे देता हूं, ये तुमको बताएगा, तुम उसका दुरुपयोग नहीं कर सकेगे, संजय इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिए समस्त जितने भी कल्याण की बातें हैं बहुत सुंदर रूप में हो रहा है। मथुरा में समझता कि यह अभूतपूर्व चीज आज जो ही है, सभी लोग इसके द्वारा उपकार इन लोगों का हुआ है। इसलिए मैं यही थोड़ा सा निवेदन किया, जो सावधानी के साथ में हो, जगत के कल्याण की भावना से हो, निस्वार्थ रूप में हो और भविष्यत में आने वाले इनके कष्टों को भी देखा जाए, इन लोगों का भी कल्याण हो, देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, यही कहकर के भगवान से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।
औपचारिकता आयोजन की आयोजना एक भाषा बन सका जाए और यह प्रशस्ति के रूप में पैसे न हो जाए कि बाद में अपने दोस्तों का ध्यान नहीं बनाती। मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए ये बताना चाहूंगा कि कल्याण स्वरूप जी अगर अपने पक्ष में कुछ कह सकती है तो यही उसकी एक विशेषता है। सामान्यतः जिन चोटों में होता क्या है कि दो तीन दिन ऑपरेशन हुए और फिर संबंधित टीम एक किसी पोस्ट क्लास एम्प्लाई जो उनका थोड़ा प्रतिष्ठित होता है उसे छोड़ करके चली जाती है और ड्रेसिंग का ये कार्य एक फोर्थ क्लास का एम्प्लाई करता रहता है। ऐसे में जो परिणाम होने हैं वो भगवान होते हैं, लेकिन कल्याण स्वरूप जी की जिस चीज से हम संपर्क करते हैं पहले निवेदन उनसे हमारा ये रहता है कि पूरे 10 दिन तक आपका प्रशिक्षित डॉक्टर हमारे बीच में रहेगा। और देखिए ये इस बात का परिचायक है कि डॉक्टर नसीम हमारे बीच में है और मैंने इनको अपनी आंखों से आत्म पक्ति करते हुए देखा है। अब मुझे संतुष्टि है कि इन्होंने आपकी पक्ति एक प्रशिक्षित डॉक्टर ने की है और ये भरोसा है जो कल्याण स्वरूप जी को इसका एक कारण बनता है कि 99.9% पेशेंट जो रोगी हैं उन्हें लाभ होता है। और ये इस बात का परिचायक है कि निरंतर रोगियों की संख्या अगर बढ़ रही है तो ये उनकी विश्वसनीयता है, उनका भरोसा है, उनकी आशा है जिसे कल्याण स्वरूप की चयन आपसे पूरा कर रही है। फिर भी महाराज जी के कल्याण में मैं ये बात जानना चाहूंगा कि आज ये हमारे कर्तव्य की समाप्ति नहीं है, वस्तुतः कर्तव्य का शुभारंभ है और हम इसको फिर 22 तारीख को इन रोगियों को पुनः जांच के लिए बुलाएंगे और फिर एक अंतिम जांच के लिए फिर बुलाएंगे, तब इनके चश्मों की जांच करेंगे। और इन दो बार की जांच में बहुत से लोग ये हमारे सुविधा महसूस करते हैं, लेकिन 2-3% के ऐसे मिलते हैं जिन्हें की तत्कालिक चिकित्सा की आवश्यकता है। उसमें ये फिर दोबारा आएंगे और विशेषज्ञों की टीम आएगी, उनको देखेंगे और देखने के बाद फिर इन्हें फिर परामर्श देकर के अंतिम बार फिर चश्मे की जांच करके जो इनकी नजर का सही चश्मा होगा वो चश्मा नहीं देगा। तो जैसा कि भारत जी ने ये किया है, हम इस कार्य को मात्र औपचारिकता की दृष्टि से नहीं ले रहे, हम इसको विशुद्ध सेवा भावना की दृष्टि से इसलिए ले रहे हैं ताकि जो सेवा का और उनकी सुनी आंखों में जो रोशनी देने का संकल्प हमने लिया है प्रभु कृपा से निरंतर आगे बढ़ता रहे और 100% विश्वसनीयता हम कल्याण स्वरूप जी के प्रति और उसके सहयोगी संगठन मथुरा रिफाइनरी सीजी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट और इसमें हमारे जो व्यक्तिगत रूप से परम सहयोगी जन है उनकी विश्वसनीयता सुनिश्चित रूप से अक्षुण बनी है। मैं इस प्रसंग में कुछ हमारे और इस पर जो कुछ कार्यकर्ता है हमारे तरफ से नवाजा की अधिकारी है जिनके सतत प्रयास से और सेवा से कार्यक्रम इस आश्रम में होते रहते हैं वही हम पर मुझे प्रेरणा देते हैं कि बाबा के लिए करा दो, बाबा के लिए करा दो। तो धन्यवाद की बात तो वही है, मैं तो आप लोगों के बीच में आ गया, आप लोगों ने दर्शन किए और जिनके दर्शन करने मुझे बड़ा हर्ष है और भगवान से प्रार्थना है कि ये संस्था उत्तरों पर ब्रह्मांड की सेवा करती रहे। बोलो श्री भारत कृष्ण स्वरूप बाबा से जी 11,000 रुपए की धनराशि कल्याण स्वरूप के सेवा कार्यों को निरंतर जीवंत और व्यक्ति बनाए रखने के लिए प्रदान की है। बाबा की ये अमूल्य धनराशि फिर माफे है और ये बाबा को मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जन सेवा सेवा कार्यों के लिए धनराशि का सदुपयोग होगा और उनका विश्वास जो कल्याण स्वरूप में जगह है वो उत्तरोत्तर और प्रोत्तर।